اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ البلاغ اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع پاکستان کے موجودہ حالات اور واقعات ہیں، ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطی میں رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی گفتگو۔ اسی سلسلے میں ہم نے گفتگو کے لیے جناب ناصر عباس شرازی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تجزیہ تحلیل کے حوالے سے ایک بہت اچھی اور گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، لہٰذا سب سے پہلا سوال ہی پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ نواز حکومت کس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور کس سمت پاکستان کو لے جانا چاہتی ہے؟ یعنی طالبان سے مذاکرات ایک عجیب سی چیز ہے، اور یہ مذاکرات کہاں تک پہنچیں گے، کہاں تک جائیں گے، کیا ان کا اختتام ہوگا، آیا اختتام جو ہے وہ اس کا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے۔ ساتھ ہی ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید پاکستان کو 100ویں حصے میں ہی صحیح، لیکن شاید پاکستان کو وہاں بھی اسٹیٹ بنانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس بات میں کس حد تک صداقت نظر آتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور اس ذریعے سے ظاہر ہے کہ حقیقی موقف کو پہنچانے کا موقع ملتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان اس وقت اپنی، میرے حساب کتاب سے، اپنے ہسٹری کے انتہائی کرٹیکل جنکچر کے اوپر ہے، بہت خطرناک فیز ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اس میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، لیکن اس وقت ہم امریکہ کے غلاموں کی غلامی میں جا رہے ہیں، جو ایک اور المناک فیز ہے جس میں ہم جا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت ہمیں شاید امریکہ ڈائریکٹ کنٹرول نہ کرتا ہو، بلکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں سعودی عرب کے ذریعے سے کنٹرول کیا جانا ہے، اور ایک مشکل ہے امریکہ کی کہ امریکہ اپنے نان اسلامک چہرے کی وجہ سے جو کام نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے اسلامک چہرے والے بعض کنٹریز کرتے ہیں، جن میں سے سب سے فرنٹ اینڈ کے اوپر امریکہ کا الائی جو ہے وہ سعودی عرب ہوتا ہے۔
یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام دشمن طاقتیں، مثلا امریکہ، اسرائیل، یورپی طاقتیں، یہ سب جو ہیں وہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان میں اپنی حکمت عملی کو عملی کروا رہی ہیں، اور وہ کام جو وہ خود کرنا ان کے لیے مشکل تھا، وہ پاکستان میں اپنے ایک دیرینہ دوست کے ذریعے جس کا نام سعودی عرب ہے عملی کروانے جا رہی ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سعودی عرب کے ذریعے کام پاکستان میں کروانا چاہیں گے، تو پھر جماعت اسلامی جیسی جو جماعتیں ہیں، یا جمعیت علماء اسلام ہے اور اس طرح کی دیگر جماعتیں جو ہیں، وہ جس طرح سے مردہ باد امریکہ کا نعرہ لگاتی تھیں، مردہ باد سعودیہ کا نعرہ تو نہیں لگا سکتی یقیناً۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اگزیکٹلی، یعنی پاکستان میں اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ خود ڈائریکٹلی کم، اور اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹس کے ذریعے سے زیادہ انوالو ہیں۔ پاکستان کے بعض المیے ہیں، ان میں سے ایک المیہ یہ ہے کہ پاکستان شاید، اگر میں مبالغہ کر کے اس بات کو سمجھانا چاہوں، کہ سعودی عرب کے اندر اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے، تو یہ درست ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ بڑا کنٹری ہے جس کے اندر سعودی عرب نے دہائیوں سے انویسٹمنٹ کی، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس انویسٹمنٹ میں انہوں نے تمام فیزز جسے انویسٹمنٹ کے کہہ سکتے ہیں وہ کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے افراد سازی کے اوپر کام کیا ہے، مدارس کی ڈیولپمنٹ کی ہے، ایک فکر ڈیولپ کی ہے، تکفیری سوچ ڈیولپ کی ہے، ملیٹنسی ڈیولپ کی ہے، اور وہ سارے اس کے پیچھے بالآخر سعودی برین موجود ہے۔ تو پاکستان اس لحاظ سے میں نے کہا کہ کرٹیکل جنکچر پہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے، اس میں ایک کارن کے اوپر ملیٹنٹس بیٹھے ہیں، طالبان جن کو لیڈ کرتے ہیں، اور طالبان بھی اس وقت انہی مدارس کے پروردہ ہیں کہ جنہیں سعودی انوالومنٹ سے بنایا گیا تھا، اور جن میں اگر پیٹرونیج کرتا ہے سمیع الحق پیٹرونیج کرتا ہے، اور جو پرو سلفی دیوبندی مکتب فکر کے مدارس ہیں وہ اس کو پیٹرونیج کرتے ہیں، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہرحال ان کی ڈومیننس ہے، ان کا غلبہ ہے، اور یہ ان کے اوپر سب سے زیادہ اگر مؤثر کوئی فورس کہنا چاہیں اس وقت ملیٹنٹس کے اوپر، تو وہ سعودی عرب ہے۔ یعنی اس کو دونوں اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ سعودی عرب کی فکر کے نتیجے میں پاکستان میں، جیسے وہاں بکیو پہ حملے ہوئے، یہاں مزارات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اولیاء کرام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں شام کے اندر، یہ ایک فکر ہے جس کا بانی سعودی عرب ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ملیٹنسی کو رواج دیا جا رہا ہے، قتل عام، گلے کاٹنا، اور یہ ساری چیزیں بالآخر وہیں سے آئی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے اس لیوریج کو पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट के खिलाफ और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भी एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। एक मुश्किल, दूसरी मुश्किल क्या है कि दूसरे कॉर्नर के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी हुकूमत है और पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई हुकूमत सऊदी अरब के करीब है या रही है और उसी के अहदाफ के लिए काम करेगी, तो मेरे ख्याल वो नवाज़ शरीफ हुकूमत है। वो उनके मुश्किल वक्त के साथी हैं, उन्होंने यहाँ से इनको निकाला है और उनके ऊपर असरात हैं, उन्होंने उनको ट्रेड दी है, उन्होंने उनको पर्सनली फैमिली वाइज उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया है, तो इस कारण के ऊपर भी ये बैठे हैं। फिर ये कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को भी जो मेजर डोनर्स हैं, या यूरोप है, अमेरिका है और फिर हमारे ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने फाइनेंस की बेस पे हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को भी तकरीबन कंट्रोल में किया। तो जितने पावर के इस वक्त सतून हैं वो भी, और जितने जो मिलिटेंसी के जो हेड्स हैं वो भी, तकरीबन इस वक्त सारे एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। तो ये बेस्ट मौका है पाकिस्तान का इस्तेसाल करने का मगरबी ताकतों के लिए, ये बेस्ट मौका है, क्योंकि सारे कॉर्नर्स उनके पास हैं, वो बेहतरीन तरीके से प्ले कर सकते हैं कि किसको कहाँ खिलाना है, वो बेहतरीन तरीके से इस मुल्क का इस्तेसाल कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपने मफादात को अचीव कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी पावर्स हैं, अहले सुन्नत के अंदर हैं, अहले तशय्यो के अंदर हैं, वो सियासी अमल से दूर रहीं, इज्तमाही अमल से दूर रहीं, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। और वो काम के जो मिलिटेंट्स 60,000 बंदे को मार के नहीं कर सके, आज वो पॉलिटिकल विंग, तालिबान के पॉलिटिकल विंग, अगर मैं ये कहूँ, बाज़ जमातें जो प्रैक्टिकली तालिबान के पॉलिटिकल विंग के तौर पर काम कर रही हैं या सामने आई हैं, वो उनके लिए कर रही हैं। यानी तालिबान 50-60 हज़ार बंदे को मार के वो अचीवमेंट नहीं ले सके जो पॉलिटिकल उनकी टीम ने उनके लिए जो है ना वो ले रही है और उनको एक इक्वल स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर कंसिडर करवा रही है। तो ये बड़ा ख़तरनाक फेज़ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है। आप गुज़िश्ते चंद दिनों के अंदर आप देखें, सऊदी अरब और सऊदी अरब प्रो सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके विज़िट्स जिस तेज़ी से बढ़े हैं और उनके नतीजे में डेवलपमेंट हुई हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हकीकी जो मुहिब वतन कुवतें हैं उनका भी इम्तिहान है। और अगर वो इंटीग्रेट नहीं होंगी, इकट्ठी नहीं होंगी और इस पूरे मुल्क के इस्तेसाल के मुकाबले में खड़ी नहीं होगी और पाकिस्तान के इस जो हाईजैकिंग है, जिस तरीके से पाकिस्तान को हाईजैक किया, उसके खिलाफ खड़ी नहीं होगी, तो पाकिस्तान एक मुश्किल फेज में आ चुका है।
शाही साहब, हमारे अगले सवाल का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान और ब्यूरोक्रेसी की इन तमाम हालात पर खामोशी से है। इनकी खामोशी की क्या वजह है? क्या ये इस नज़रिए पर अमल कर रहे हैं कि इमदाद लेते रहेंगे और खामोश बैठे रहेंगे, अय्याशी करते रहेंगे और आखिर में तालिबान से भी निमट ही लेंगे, जबकि ये खाम ख्याली नज़र आती है। साथ ही कत्ल, जब आवाम का कत्ल आम होता है तो इनकी तरफ से कोई रद्द अमल, कोई इंतकामी कार्रवाई नज़र नहीं आती। हत्ता अगर एक आम फौजी मारा जाता है तो उस पर भी लोग खामोश रहते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई जर्नैल कर्नैल मरता है तो फिर इंतकामी कार्रवाई देखने में नज़र आती है। ये किस तरह की तकसीम है और ये किस तरह पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं?
अभी जो सीज़ फायर है ना, ये सीज़ फायर भी इतना ही ख़तरनाक है। क्यों? आपने कहा हम अभी स्टेट को नहीं छेड़ रहे, लेकिन सिविलियंस तो हिट हो रहे हैं ना, और सबसे ज़्यादा उसका विक्टिम कौन बन रहा है? अहले तशय्यो बन रहे हैं, और वो हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारे जिनका काम ही अपने आवाम की हिफाजत के लिए स्टैंड लेना है, वो उस पर खड़े नहीं हो रहे। आपने एक ऐसी बार्गेनिंग कर ली है जिसके नतीजे में आप उनको ये कह रहे हैं हमें छोड़ दो, मुल्क का कबाड़ा कर दो, मुल्क के हकीकी शहरियों का आप कबाड़ा कर दो, उनका कत्लेआम करो, कोई मसला नहीं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें छोड़ दो। इसका मतलब है कि जब वो थोड़ा सा मजीद ग्रो कर जाएंगे तो वो आपको छोड़ेंगे, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो पूरे मुल्क को अपने तसल्लत के अंदर लेकर आएंगे। एक दो, दुनिया के अंदर तजर्बात क्या है, जहां पे भी मिलिटेंट्स को बैठने का मौका मिला है उन्होंने उस इलाके को अपना हॉटस्पॉट बनाया है, पूरी दुनिया में मिलिटेंसी को परवान चढ़ाया है और उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को चैलेंज किया, रियासत को चैलेंज किया, स्टेट को चैलेंज किया, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, फौज को चैलेंज किया, इदारों को चैलेंज किया। क्या अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ? क्या इराक के अंदर ऐसा नहीं हुआ? क्या इराक के बाद अंबार और उन इलाकों के अंदर ऐसा नहीं हुआ? क्या सूर्या के अंदर उन्होंने ये करने की कोशिश नहीं की? क्या पाकिस्तान के अंदर वो नहीं करेंगे? यानी जैसे ही उनको अपनी पावर एज्यूम होती नजर आएगी, वो पाकिस्तान के किस इदारे को कंसिडर करेंगे? वो पाकिस्तान के तमाम इदारों के मुकाबले में खड़े होकर अपनी स्टेट कायम करने की, पूरी दुनिया के अंदर जहां हुआ है उन्होंने ऐसे ही किया, पाकिस्तान के अंदर ऐसे किया, तो क्या आपको तारीख से सबक हासिल नहीं करना चाहिए? लेकिन हमारी मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट की एक मुश्किल है, वो मैं बयान करना चाहूँगा, वो ये है कि मिलिट्री ओवरस्ट्रेच है और वो ये समझते हैं कि हमें कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेना है, लिहाजा डिसीजन मेकर इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स है और पॉलिटिकल फोर्स या रजीम जो है इस वक्त वो प्रो सऊदी है। बस एक अजीब इक्वेशन है कि जज भी वही है, मुलजम भी वही है, फैसला देने वाला भी वही है, गवाह भी वही है, वकील भी वही है, वो मिलकर इस पूरे मामले को एक सीन के अंदर वो करना चाह रहे हैं। ये मुश्किल है कि फौज भी इस मौजू पे बोलने की पोजीशन में बोल नहीं पा रही है, बोल नहीं रही है, वो नहीं समझ रही है कि इस मौजू पे हमें स्टैंड लेना बनता है, क्योंकि फौज की एक डोमेन है, वो डोमेन आईने पाकिस्तान के तहत क्लियर है, उससे पता है कि मुल्क को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से हमें सेफ रखना है, इसीलिए फौज बनाई गई है। अब अगर आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स के इंतजार में रहेंगे तो फिर तो आपने डिफेंस कर लिया, अगर वहां पर वो लोग कोई बारगेन करते हैं, वो लोग किसी आलमी प्रेशर के अंदर आके हमारे मुल्क के बाज मामला पर सौदाबाजी करते हैं, तो फिर आप तो आपने मुल्क बचा लिया, आपको एक डोमेन दे दी गई है आईन के तहत, आपको उसके मुताबिक एक्ट करना है। आपके लोगों को मर्डर किया जाता है, आप एक्ट नहीं करते हैं, आपके सिविलियन को मारा जाता है, आप एक्ट नहीं करते हैं, आपके इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होते हैं, आप एक्ट नहीं करते हैं, आपके लोगों को अदालतों से छोड़ा जाता है, आप एक्ट नहीं करते, तो किस चीज़ की दवाएं, खतरनाक है बहुत ज़्यादा। तो बज़ाहिर उन्हें बावर यही कराया गया है, चूंकि ये एक रियलिटी है कि मुशर्रफ के बाद जिस तरीके से फौजी हुकूमतें, और ज़ाहिर एक सबका है उनका, फौजी हुकूमतों का जो फेल्ड स्टेट के तौर पे सामने आना है मुल्क को, उसने उनको इस पोजीशन में नहीं रखा कि इस वक्त वो फ्रंट एंड के ऊपर आके वो पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकें, लिहाजा वो जो भी करना चाहेंगे वो पॉलिटिकल टीम की बैक पे रह के करना चाहेंगे, और यही इस वक्त उनके लिए उनकी इजाफ़ है, यही उनकी कमज़ोरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपने इदारे को भी बचाना चाहें, अगर अपने मुल्क को बचाना तो बड़ी दूर की बात, अगर अपने इदारे को भी बचाना चाहें तो इट इज़ द टाइम टू डिसाइड कि वो स्टैंड लें और वो अपनी वो रेड लाइंस पॉलिटिकल हुकूमत के सामने क्लियर करें कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इन रेड लाइंस को आइन के तहत ये दी गई हैं, हम इन रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करने देंगे, बाकी व्हाट्स एवर यू आप जो जानना चाहते हैं वो करें, जो जो प्ले करना चाहते हैं करें, लेकिन ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं करने देंगे, वो रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। और अभी जो अगला फेज़ आ रहा है कि आप दहशतगर्दों को छोड़ने जा रहे हैं, आप जी एच क्यू पे हमला करने वालों को छोड़ने जा रहे हैं, आप आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला करने वालों को छोड़ने जा रहे हैं, आप सिविलियंस के ऊपर हमला करने वालों को छोड़, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप मुल्क की हकीकी कुवतों को, क्या आप स्टेक होल्डर नहीं है उसके उसमें उसके अंदर आएगा, आप ज़ेर सवाल आएंगे, यानी फौज को ये बात समझनी चाहिए कि इससे सिर्फ सिविल हुकूमत ज़ेर सवाल नहीं आएगी, फौज ज़ेर सवाल आएगी, और बदकिस्मती से उसके अंदर बढ़ती हुई जो इन्वॉल्वमेंट है, अभी इत्तेफाक से मैं एक दोस्त के यहाँ खाने की दावत पे था, तो वहीं पे एक फोर्स के साथ भी बैठे हुए थे एयरफोर्स के, और उनके हाथ में देवबंदी हजरात की तफसीर कुरान पाक थी जो ऑफिशियली एयरफोर्स ने तमाम अपने एम्प्लॉइज को दी। आप तो एक मकतबे फिक्र के लिए काम कर रहे हैं, आप तो मेजॉरिटी के मुकाबले में खड़े हैं, ये बहुत खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौज को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और फौज को अपने हकीकी रोल जो आईन ने उसको दिया है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और उस रोल में जो उसकी लाइंस हैं वो उसको बिल्कुल विजिबली हुकूमत को बताने की ज़रूरत है कि ये हमारी लाइन है, हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इस लाइन को क्रॉस करने भी नहीं दें, वरना मुल्क नहीं बचता।
शाहिद साहब, आप ही की बात से नतीजा खास करते हुए, यानी दर हकीकत ज़िया दौर में जो बीज बोया गया था पाकिस्तान में, अब वो फसल जो है वो पक चुकी है और उसकी कामयाबी के साथ कटाई होने जा रही है, अनलेस के कोई मौजूदा रूनमा हो जाए और पाकिस्तान में ये हालात तब्दील हो जाएं, इस बारे में क्या ख्याल है आपका?
जी जी, मुल्क खतरे में है, हुकूमत खतरे में है, फौज खतरे में है, और फौज बिलाखर आपकी डिफेंस लाइन है, अगर वो नहीं बाकी बचती तो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट दोनों मिलकर आपको क्लैप्स कर देंगे, और यही दुश्मन बावर कराना चाह रहा है फौज को, और हमारे मुल्क को एक फेल्ड स्टेट बावर कराना चाह रहा है, तभी वो आपसे आपके एटॉमिक पावर का स्टेटस ले सकते हैं, तभी आपसे आपकी इंस्टॉलेशंस को वाइंड अप करने की बात कर सकते हैं, तभी आपको मजीद महदूद कर सकते हैं, जब आपके ऊपर ये ठप्पा लगा दें कि आप कैपेबल नहीं है मिलिटेंट्स के साथ डील करने के लिए, आप ये ठप्पा लगवा रहे हैं अपने ऊपर। मैं समझता हूँ बहुत 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 नीचे भी अगर जाए ना, हमारी फोर्स दुनिया की बड़ी फोर्सेज के अंदर है, मैं अभी इराक से अंदर होके आया हूँ, इराक के अंदर जो फोर्सेज हैं, जाहिर है अभी उन्हें 10 साल हो गए सदाम के दौर के बाद की वो फौज डेवलप हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से, और मिलिटेंसी का उन्हें सामना है, यही पाकिस्तान वाली सूरत हाल है, लेकिन वो उससे बदतर थी, आज पाकिस्तान उससे बदतर है। जब मैं वहाँ उनसे बातचीत करता हूँ इराकियों के साथ, इराकी पॉलिटिशियंस के साथ, तो वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमसे बहुत बदतर है, हम तो अपने आप को बड़ी अच्छी स्टेट उसके अंदर समझते हैं, हमारे यहाँ तो बाज़ एरियाज हमने अपने सेफ एरियाज डिक्लेयर कर रही हैं, वहाँ तो हमला करना बड़ा एक ख्वाब है, पाकिस्तान में तो कोई सेफ हेवन नहीं है, ना कैपिटल है, ना दीगर इलाके हैं, कि जहां आप कहें मिलिटेंट्स की सेफ हेवन्स हैं, जहां आप हमला नहीं कर सकते, आपकी कोई सेफ हेवन नहीं है जहां मिलिटेंट्स हमला नहीं कर सकते, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आती, آپ کی کوئی ویزیبل پالیسی نظر نہیں آتی، آپ نظر نہیں آتے کہ ملیٹنٹس کے مقابلے میں آپ کا 2 اور 2 4 کی طرح سٹینڈ کیا ہے. یہ ملیٹنٹس کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات نہیں ہے کیا؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیسیژن کرنا ہوگا، اور پاکستان کی جو پرو پاکستان محب وطن قوتیں ہیں انہیں اکٹھے ہو کر پاکستان میں پولیٹیکل پریشر بھی ڈیولپ کرنا ہوگا، عوامی پریشر بھی ڈیولپ کرنا ہوگا، تب ان اداروں کو اپنا رول پلے کرنے کی گنجائش ملے گی.
سعودی عرب انتہائی بھیانک بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا ہے، اور نہ جانے وہ اس بوکھلاہٹ کے اندر کیا کچھ کر چکا ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہا ہے. اس حوالے سے روشنی ڈالیں.
سعودی عرب کی جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان کے آئندہ 10 سال اہم ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ خود سعودی عرب کے آئندہ 10 سال اہم ہے. اسی کے لیے وہ اپنے تمام ایسٹس کو استعمال کر رہا ہے، اس میں ایک پاکستان ہے. وہ دنیا بھر کے اندر اپنے تمام ایسٹس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے اور ایزیلی یوز ہوتے ہیں جو ٹیشو پیپر بنے ہوئے، وہ ہم لوگ ہیں بدقسمتی کے ساتھ. ہمیں ہاں اس کو وہ اب رزلٹ لے رہے ہیں. ہم پیسے کی بنیاد پہ بھی سیل ہو رہے ہیں، ہم اسٹریٹجیکل الائے کی بنیاد پہ بھی سیل ہوتے ہیں، ہم نظریاتی اور فکری بنیاد کی بھی سیل ہو رہے ہیں. یہ خطرناک ہے بہت زیادہ. سعودی عرب نے اپنا مستقبل اسرائیل کے ساتھ وابستہ کر لیا. اسرائیل کی سروائیول اور سعودی عرب کا سروائیول ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، لہٰذا سعودی عرب اسرائیل کی سروائیول کو یقینی بنانے کے لیے ان تمام قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہو گیا ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑی. ایران اور انقلابی قوتیں مزاحمت کا بلاغ صفحہ اول کے اوپر نشانہ بنتا ہے. آپ دیکھتے ہیں شیعہ سن، آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب نے کتنا سٹینڈ لیا ہے اخوان المسلمین کے خلاف، آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے اخوان المسلمین کے خلاف، آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے خطہ جی سی سی جو اس کے بہترین الائی کنٹریز تھے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اپنے افراد کو واپس بلا لیا ہے. قطر سے 3 کنٹریز نے جو پرو سعودی بلاک کے اہم ترین کنٹریز شمار ہوتے ہیں، یو اے ای، سعودی عرب اور اس نے بحرین نے، انہوں نے اپنے سفرا کو واپس بلایا ہے قطر سے. کیوں؟ قطر چونکہ اخوان کی سپورٹ کر رہا ہے. انہوں نے قطر سے الجزیرہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ الجزیرہ جو ہے وہ مور اور لیس اخوان کو سپورٹ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں شیعہ اور سنی والا مسئلہ نہیں ہے. ہر وہ قوت جو کسی نہ کسی طور اسرائیل کے مقابلے میں ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ پرابلم ہے کہ سعودی عرب کی بقا کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی ہے، ایک خطہ اور ریجن کے اندر سعودی عرب کی تمام تر اس وقت پولیٹیکل سٹیک جو ہے وہ سیریا کے اندر ہے. سیریا کے اندر سعودی مفادات کی شکست یا امریکی مفادات کی شکست یا اسرائیلی مفادات کی شکست کا مطلب ہے ان تمام قوتوں کی شکست، اور عملاً آن دا فیلڈ آن دا گراؤنڈ مزاحمت کے بلاک نے پرو امریکہ بلاک جس میں سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل آتے ہیں، ان کو بدترین شکست دے دی اور کنٹینیوسلی شکست دے رہے ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لہٰذا اگر یہ محاذ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو آپ یہ دیکھیں مزاحمت کا بلاک کتنا قوی ہو جائے گا. لبنان کے بارڈر، سیریا کا بارڈر، عراق کا بارڈر، ایران، یہ مزاحمت کا بلاک بہت قوی ہو جائے گا، اور خود اسرائیل کی بقا خطرے میں پڑ رہی ہے اس کے بعد. لہٰذا وہ آخری ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس آخری ایفرٹ میں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لگا رہے ہیں. اس میں سے بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں کوئی ملک بھی جس میں تھوڑی بھی عقل و فہم ہے نا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں اس مسئلے کے اوپر. حتیٰ بارڈرنگ کنٹریز، ترکی اپنی پالیسی کے اندر چینج لا رہا ہے، پالیسی شفٹ کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عراق سٹینڈ لے چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ خود جارڈن تو خیر بہت ایک آپ کہہ لیں چھوٹا کنٹری، قطر کی بھی وہ پالیسی پرانی باقی نہیں رہی تھی جو پہلے سے ہے. آپ اکیلے اسٹیک ہولڈر اس وقت سعودی عرب ہے جو اس معاملے پر بھرپور سٹینڈ لے رہا ہے. سعودی عرب کیا ایفرٹ کر رہا ہے؟ انہیں ملیٹنٹس کی سب سے بڑی پناہ گاہ پاکستان انہیں اس وقت چاہیے. ملیٹنٹس بھی چاہیے انہیں، فوج بھی چاہیے انہیں، یہاں سے ویپن بھی چاہیے. یہ بڑی ایک ایکویشن اس وقت سیٹ ہوئی ہے. لہٰذا وہ پاکستان سے ملیٹنٹس، یہ جو ابھی آخری ایک ہائپ آئی ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ملیٹنٹس نے بہت زیادہ کاروائیاں کی ہیں پاکستان کے اندر. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ فوج کو اور ریاستی اداروں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں، نیگوشیٹ کریں، اس کے لیے کی گئی ہیں. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے یہی پاور سی، پرو سعودی پاور سی، سعودی عرب تھا جس نے پہلے پاکستانی ریاستی اداروں کو پریشر ان کے اوپر ڈالا، اور اس کے بعد نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آ گئے اور کہا کہ ہم آپ کے درمیان جو ہے نا یہ ڈیسیژن کراتے ہیں، اور پھر کہا کہ اس کے درمیان حل یہ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو نہیں چھیڑیں اور ملیٹنٹس پاکستان کے اندر کاروائیاں نہیں کریں گے، تاکہ اس وقت ملیٹنٹس کو ڈائریکشنلائز کیا جا سکے سیریا کے لیے. لہذا पाकिस्तान को वो ये बावर करा रहे हैं कि ये मिलिटेंट्स जो इतने कैपेबल हैं कि आपके लोगों को उन्होंने जिच करके रख दिया है, हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े ना हों। लेकिन आपको इसके मुकाबले में कुछ देना होगा, ये जो मुज़ाकरात के शोशे में से एक बात है, वो क्या देना होगा? वो ये देना होगा कि आप जो हैं वो इन मिलिटेंट्स को थोड़ा सरफे नज़र करें, इनका ये एक एरिया है वहाँ से फ़ौज को वापस बुला लें जिसकी बातें चल रही हैं, इनके कुछ लोगों को वापस भेज दें। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करेंगे, ये बावर करा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये पाकिस्तान से वेपन भी लेंगे, पाकिस्तान से अपने टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें वो भी लेंगे, और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएंगे वाया जॉर्डन सीरिया में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ के ऑपरेशन और इन मामला को लॉन्च करेंगे। लेकिन ये कितना ख़तरनाक है कि जब किसी को आप सेफ हेवन देते हैं तो वो बाहर के कामों को तो करता है लेकिन अपने इलाके के अंदर तो बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है और वो अपने आप को इतना पावरफुल फील करने लगता है कि फिर वो आपकी हुकूमत के मुकाबले में खड़े हो जाता है। और यही होने जा रहा है, हमें सिर्फ वक्ती तहफ़ या वक्ती एक रिलीफ प्रोवाइड करने के नाम पर हमें बदतरीन बहरान से दो चार किया जाना मकसूद है। और अगर ये नहीं समझा तो हमें दिन मिलेंगे, फिर हमें साल नहीं मिलेंगे और मुल्क जो है एक खाना जंगी की कैफियत में आ जाएगा इन मिलिटेंट्स के हाथों। लिहाजा सऊदी अरब को मसला सिर्फ बाहर का नहीं है, जो मैंने आपने कहा सवाल किया ना, फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ मसला नहीं, दाखला मसला है, अवामी लोग हिमायत उनके साथ नहीं है। जो तेल का पूरा खिता है वहाँ जो इनके मजालम हैं और जो जराइम हैं अहले तशियों के मुकाबले में, जो इनकी ज़्यादतियाँ हैं, जो मार्जिनलाइजेशन है उनकी, उसके नतीजे में उनमें रिजेंटमेंट बढ़ रही है, वो खड़े हो रहे हैं। इसी तरीके से एक बार्डर इनका बहरीन का बार्डर है, बहरीन के अंदर भी अहले तशियों हैं, इधर भी अहले तशियों हैं, उनके ऊपर जो मजालम किए हैं वो उसके मुकाबले में वहाँ खड़े हैं, वहाँ पोलिटिकल मूवमेंट चल रही है, ये एक इलाका है। फिर आप देखते हैं कि यमन के अंदर जिस तरीके से हौसियों ने एक मुज़ाहमत का ब्लॉक तश्कील दिया है और वो इतने स्ट्रेंथन हैं कि आप 6 महीने जंग करने के बावजूद एक इंच कब उनका इलाका नहीं ले सकें, तो उन्होंने अपनी पावर शो की है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप ऑल आउट वार में जाते हैं तो वो कैपेबल हैं कि बहुत कुछ आपको दिखाएं। तो और ख़ुद हिजाज के अंदर, नजद के इलाकों के अंदर भी आपकी ग्रिप कमज़ोर पड़ रही है, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, मुजाहरे शुरू हो गए हैं, लोगों ने रिजेंटमेंट का इजहार करना शुरू कर दिया है, मुख्तलिफ नामों पर वहाँ पर इशूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और अमलन लोकल सपोर्ट भी इस वक्त आपको हासिल नहीं है। लिहाजा बाहर के मामलात में नाकामी के बाद सारा प्रेशर आपको इंटरनल आना है। आप दुनिया को धोखा देने की बात करते हुए कहते हैं कि हम अपने मुल्क में कानून साजी कर रहे हैं और मिलिटेंट्स जो बाहर हैं वो अगर हम मुल्क में उनके लिए सजाओं का ऐलान कर रहे हैं कि वो मिलिटेंट्स अगर सऊदी मिलिटेंट है वो अगर मुल्क के अंदर आएगा तो हम उसके लिए ये सजाएं नाफिज करेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर आप जेलों के अंदर भी लोगों को निकाल के शाम भेज रहे हैं कि अगर आपको सजाए मौत हुई है हम आपको यहाँ से निकलते हैं, आप शाम के अंदर जाएँ, आपको जहादुल निकाह के नाम पर लड़कियाँ भी देंगे, हम आपको वसाइल भी देंगे, हम आपको वहाँ पर हुकूमत और एरिया भी देंगे और आप वहाँ जाएं और अपना काम करें और आपको ज़िंदगी आपकी बख्श रहे हैं। आप कितनी बड़ी दुआ अमली कर रहे हैं। लिहाजा ये इंटरनल और एक्सटर्नली इस वक्त इंतहाई वीक है सऊदी अरब। मैं ये समझता हूँ आइंदा 10 साल अगर किसी की किस्मत का फैसला करेंगे तो वो 10 साल से कम मुद्दत के अंदर सऊदी अरब की किस्मत का फैसला होगा, और सऊदी अरब अपने आप को इस कैफियत के अंदर अब रिटेन नहीं रख सकता है।
इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अमेरिका ज़ाहरी तौर पर एक नरम गोशा इख्तियार किए हुए नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर ओबामा इंतज़ामिया, और अभी रिसेंटली जो है वो ओबामा सऊदी अरब भी गया है नाराज़ सऊदी बादशाह को मनाने के लिए, जिसने रिश्वत के तौर पर इस मुलाकात में उसने यमन में एक फ़ौजी छावनी बनाने का ऐलान भी किया है। तो क्या ऐसा नज़र नहीं आता कि शायद ओबामा इंतज़ामिया के गुजर जाने के बाद, यानी इस फेज़ के बाद अगले फेज़ में अमरीका में दोबारा इंतहा पसंद इस्टेब्लिशमेंट आ जाए और फिर सऊदी अरब इसराइल और वो इंतहा पसंद इस्टेब्लिशमेंट यानी बुश इंतज़ामिया टाइप के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलकर पूरी दुनिया में कोई बहुत बड़ा आगो खून का खेल खेलें?
देखिए मैं समझता हूँ कि अमेरिकन पॉलिसी को ओबामा और बुश और उसके अंदर तकसीम करना ठीक नहीं है। अमेरिकन पॉलिसी को अमेरिकन पॉलिसी के अंदर समझना चाहिए। एक इंपीरियल पावर की पॉलिसी एक ही होती है और वो जो फिरौनी कुव्वत है उसमें चेहरे बदल सकते हैं, सिस्टम एक ही है और वो उस सिस्टम के मुताबिक इस्तेसाल को रवाज देंगे और जो उनके लिए सबसे बेहतर मोहरे काम आते हैं उनमें से जैसे सऊदी और इस तरह के दीगर पास कंट्रीज़ है वो उनसे भरपूर इस्तेफादा करेंगे। उनके लिए इन कंट्रीज़ की भी कोई अहमियत नहीं है, वो जब चाहेंगे इनका टिश्यू पेपर यूज़ करते हुए इनको भी वो तबाही से दो चार करेंगे, उनके लिए इनका भी कोई कंसर्न जो है ना वो नहीं है। ये कैपेबल नहीं है आज़ादाना सोचने के, आज़ादाना एक्ट करने के, आज़ादाना रिएक्ट करने के, लिहाजा ये उन्हीं के तहत तासीर ही सोचते हैं, ये एक मुश्किल है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि आइंदा आने में कोई बड़ी इस वक्त शायद ओबामा का दौर इस लिहाज से कि ओबामा मुनाफिकत में बहुत आगे गया है, वो बज़ाहिर कुछ और कहता है प्रैक्टिस में कुछ और करता है, तो मैं उसको अलग करके नहीं देखना। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और सऊदी अरब और इसराइल एक ब्लॉक है और इनके मुश्तरक मफादात हैं, और कहीं कहीं एक दूसरे को दिखाने के लिए छोटे मोटे इनके वो मसाइल भी होते हैं, वो छोटी लेवल के मसाइल होते हैं। मसलन मुमकिन है कहीं अमेरिका सऊदी अरब को मज़ीद प्रेशर में लाने के लिए अमेरिका के किसी सऊदी अरब के किसी मुखालफ कंट्री के साथ कोई साजबाज करे, इसका इम्कान मौजूद है। इसका इम्कान यानी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन इन जनरल इन प्रिंसिपल ये एक ही टेबल के ऊपर हैं, ये एक ही साइड है, एक ही ब्लॉक है, एक ही फिक्र है। लिहाजा ये ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हैं, इनकलाबी कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। स्टैटिस्टिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे कोई छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है, स्ट्रेटजिकल लेवल पे ये इकट्ठे हैं। तो ईरान के खिलाफ ज़ाहिर है इनके अहदाफ मुश्तरक हैं और वो चाहेंगे कि उसकी डोमिनेंस को, उसके बढ़ते हुए असर नफूज को, इनकलाबी कुव्वतों की ताकत को किसी तौर कमज़ोर किया जा सके। लेकिन इनकलाब अपने मुश्किल तरीन मराहल में उसने तोसी पैदा की है और वो इस फिरौनी निज़ाम के असर में आने वाला नहीं है। और अब अमलन जो ब्रेक होना है और अमलन जो चीज़ स्प्लिट आनी है, कहीं टूटनी है, तो वो इन्हीं के अंदर टूटनी है। इनकलाब ने दिखा दिया है, मुजाहमत के ब्लाक ने दिखा दिया है कि वो पूरी दुनिया भी इकट्ठी होकर एक मुल्क में उसके मुकाबले में आया है और तमाम बॉर्डर से उन्होंने अपनी पावर्स को उसमें यूटिलाइज़ किया है, तो तब भी वो अपने मफादात को हासिल नहीं कर सकते हैं। और अभी जो ऑन द ग्राउंड जो चेंजिंग आई हैं अभी ताज़ा कलामून जंग के अंदर, तो उसके बाद तो आप समझें कि एक चैप्टर ही बंद हो गया है सऊदी अरब के मफादात के हसूल के लिए शाम में बशर अल असद की हुकूमत को तब्दील करने का जो एक ख्वाब था वो ख्वाब महव हो गया।
शाम में मुसलसल बशार अल असद की कामयाबियां, जिसका इकरार आलमी मीडिया ने भी किया है और वो भी ईरानी ब्लॉक के सरबराही में, इस हवाले से आप क्या नज़र रखते हैं?
देखिए, शाम का मसला तो चूँकि मैंने उसके कुछ पहलू तो बयान कर सका हूँ, मैं उसे ईरानी ब्लाक नहीं बल्कि मैं मुजाहमत का ब्लाक कहता हूँ। अलबत्ता मुजाहमत के ब्लाक में ईरान को ये क्रेडिट जाता है कि वो फ्रंट एंड के ऊपर खड़ा है, लिहाजा वो लीड कर रहा है इसको, ये दुरुस्त है। मजलूमों की हिमायत में, इस्तेमार के मुकाबले में और काबज कुतों के मुकाबले में अवामी मुजाहमत को लीड करना, ये उनका रोल है, ये उनको क्रेडिट जाता है तारीख में, तूले तारीख में ये रहा। लेकिन फिर भी उनकी उनकी हिमायत पर खड़े हुए, अभी भी इख्वान की हिमायत उन्होंने की है, अभी भी मुख्तलिफ मौज़ू अहले सुन्नत के साथ वो खड़े हैं। और लेकिन उन्होंने असल करार दिया हुआ है, मसलन वो इसराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते, इसराइल के मुकाबले में खड़े हैं, अमरीका के मुकाबले में खड़े हैं, ये वाजे है उनके लिए। तो मैं ये शाम में अभी ताज़ा जो चेंजेस हुई उसके पीछे बाज़ वजूहात हैं। एक वजह कि जो जराइम इन लोगों ने वहाँ पर किए और जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम का जो चेहरा वहाँ पर पेश किया, उसके बाद अवाम के अंदर जो एक मुतवक्के पज़ीराई थी वो बिल्कुल बरक्स हो गया। शायद इन्हें ये तवक्को थी कि अवाम हमारी पज़ीराई करेंगे, और शायद अवाम के पास एरियाज़ ऐसे थे भी सही कि जो बशर अल असद के साथ ज़्यादा हमंग नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इनका रूप देखा तो वो इतना ख़तरनाक और घनावना है कि वो दोबारा से बशर अल असद को अपने लिए, बशर अल असद उन्हें जन्नत लगने लग पड़ा है, उन्होंने ये जहन्नम देखी है, उसके बाद उन्हें बशर अल असद जन्नत लगने को पड़ा, जबकि उससे पहले वो बशर अल असद को एक नेमत नहीं समझते होंगे। एक दूसरा, वो लोग जो माइग्रेशन की जिन्होंने, उनके साथ जिस तरीके से इंसानी इस्तेसाल, जिनसी इस्तेसाल, इक्तसादी इस्तेसाल, उनकी औरतों के साथ, उनकी नस्लों के साथ जो कुछ हो रहा है उर्दन के अंदर हो रहा है, शाम के विदिन बॉर्डर के अंदर जो यूनाइटेड नेशन जिनको मॉनिटर कर रही है वहाँ पर हो रहा है, जो तुर्की के बॉर्डर के ऊपर तुर्की के अंडर कंट्रोल है वहाँ पे ऊपर हो रहा है, ये सारे उसके अंदर शरीक हैं इन जराइम के अंदर। उसके बहुत तकरीबन आधी आबादी है जो डिस्प्लेस्ड है, उस आबादी ने देखा है कि ये लोग जो हमारे वकील बनकर आए थे, इन्होंने तो हमें निचोड़ा है, इन्होंने तो हमारे हमारी इसमतों को इन्होंने सरेआम बेचा है, इन्होंने तो हमारी नस्लों के साथ खेला है, इन्होंने तो हमें सिर्फ एक गेंद के तौर पर यूज़ किया है और ठोकर लगाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, तो हमारे हकूक के लिए नहीं खड़े होते। अगर हमारे हकूक के लिए खड़े होते तो कम से कम जहां हम इनके पास हैं यहां तो हमें हक देते, वहां पे भी आपने हक नहीं दिया। लिहाजा वो नफरत इस वक्त वहां पर वेस्ट के लिए भी, जिन पावर्स ने ये जंग शुरू की उनके लिए भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और अवाम में बशर अल असद की हिमायत, चूँकि बशर ने बिलाखर इनके मुकाबले में जंग भी लड़ी है और इसके बावजूद उसने अपने इलाकों को जहाँ रिटेन किया वहाँ आज भी लॉ एंड ऑर्डर नज़र आता है, आज भी दमिश्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, आज भी वो एरियाज़ के जिनको ये लोग कंट्रोल करते हैं वहाँ आज भी कानून की हुक्मरानी है, आज भी वहाँ अमन है, नस्बता इनकी नस्बत बहुत अच्छा अमन है। तीसरी बात यह है कि लोग ये समझ रहे थे कि मुमकिन है कि ये अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आएंगे तो फिर कोई हुकूमत और कोई एरिया ये भी डेवलप करेंगे, लेकिन ये तो आपस में जंग, दाइश और अनुसरा जंग के अंदर, एक ही फिक्रे की आइडियोलॉजी, कत्लेआम किए उन्होंने एक दूसरे का। उन्हें उन्हें पता चला ये खुद भी वैशी हैं, ये तो हमारे साथ भी वैशियाना सलूक करेंगे, ये खुद वैशी हैं, ये एक दूसरे के साथ भी, ये सारी मफादात की जंग है। कहीं तेल की इंस्टॉलेशन पे जंग हो रही है, कहीं औरतों पे जंग हो रही है, कहीं माल गनीमत पे जंग हो रही है, कहीं इलाके के जो माल मादनी और तजारती और ये वसाइल हैं उनके ऊपर जंग हो रही है, और तो कोई मसला ही नहीं है वहाँ पर। और फिर ये देखेंगे, ये था कि ये शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर और कुदरतमंद है, इनकी कुदरत का सहर भी ख़त्म हो गया है। कुर्दों ने इनके मुकाबले में स्टैंड लिया, कुर्दों ने मारा है, कुर्दों ने अपना पूरा एरिया रिटेन किया। उसके बाद आप देखते हैं कि जो खुद बशर अल असद की फोर्सेस है, जिस तरीके से उन्होंने जहाँ जहाँ इनके मुकाबले में स्टैंड लिया, आप देखते हैं कि उन्होंने अचीवमेंट की। और अभी पूरा लबनान बॉर्डर, कलामून का एरिया, यबरूद का जो सबसे बड़ा इनका किला था, उसको उन्होंने ताराज कर दिया है, मिलिटेंट्स को मार दिया है, होम्स इस वक्त लेने के करीब हैं, और उससे पहले बाज़ एरियाज तो बड़े स्ट्रेटजिकल वो ले चुके हैं। तो अभी यानी आप समझे कि उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है। जो दूसरा बड़ा एरिया इस वक्त इनके पास था वो एरिया यही कलमून का एरिया था, और कलमून के अंदर से भी वो यबरूद का एरिया था, जिसको इन्होंने ये करार दिया हुआ था कि ये हमारी और उनके दरमियान हद है, यानी ये जंग का डिसीजन करेगी, और वो डिसीजन हो गया, वो उनके हक में चली गई। आज कल आगा हसन नसरुल्ला ने भी जो वहाँ पर गुफ्तगू की है वो बहुत स्ट्रेटजिकल है। उन्होंने लबनान के अंदर, शाम के अंदर अपनी मौजूदगी को दरअसल लबनान के दिफा का नाम दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ये जंग ना लड़ते पूरा खत्ता डिस्टेबलाइज होता, तो उन्होंने उस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज, उन्होंने इसराइल के मुकाबले में अपने सबका स्टैंड को दोहराया कि हमने उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। पहले वो इसराइल जो एक बॉर्डर से अनसेफ था, अब वो सीरियन बॉर्डर से भी अनसेफ है, वहाँ पर भी हिजबुल्ला बैठी है, वो तो बिल्कुल चक्की के दो पार्टों के अंदर इस वक्त आ गए, तो वल्नरेबल कंडीशन है उनके लिए, वो और ज़्यादा वीक हुए हैं। तो सीरिया स्ट्रेंथन हो रहा है कई वजूहत की बुनियाद पर, और उनमें से चंद वजूहत जो मैंने आपके सामने बयान की, खुद इंटरनेशनल सिनेरियो पे फेलियर इनका, ये फ़ौज के मुकाबले में खड़े नहीं हो सके हैं, ये फ़ौज की कार्रवाइयों को रोक नहीं सके हैं, और इन सारी चीज़ों ने बिलाखर सीरियन फ़ौज को, सीरियन अवाम को अब हौसला दिया। और अब असल में अवाम है, अब देखते हैं बशर अल असद निकलता है दमिश्क से, वो जो विद इन कंट्री डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके घरों में जाता है, उनके कैंप्स के अंदर जाता है, वहाँ जाके लोगों से खिताब करता है, वो नमाज पढ़ता है, वो ईद में जाता है, वो अब अवाम के अंदर आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये एक तब्दीली है। और फिर पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी, जहाँ मसलन नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ये बैठे हैं जनेवा के मुज़ाकरात, उसके अंदर भी चूँकि ऑन द ग्राउंड ये मजबूत हैं, तो ऑन द टॉक भी ये मजबूत हैं, टॉक में भी ये मजबूत हैं, तो ये गेन कर रहे हैं। और इस वक्त अमलन सीरिया का कज़िया ये तूल पकड़ेगा, ये अपनी मिलिटेंसी को चलाएंगे, ये अभी उर्दन के ज़रिए से एक बहुत बड़ा वो ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहते हैं, ये भी दुरुस्त है, ये अपनी ख्वाहिशों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन अमलन इस वक्त सीरिया इनके हाथ से निकल गया है, और सीरिया इस वक्त मुज़ाहमत की कुव्वतों के एक मजबूत मरकज़ के तौर पर डेवलप हो रहा है।
शाहिद साहब, आखिरी बात दोबारा पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान भी शाम बनता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर पाकिस्तान में भी बशार हुकूमत की तरह सख्त रवैया अपनाया नहीं गया इन शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, तो यहाँ पर भी शायद वही सब कुछ होने जा रहा है जो कुछ शाम में हुआ है। तो इस हवाले से, इसकी रोकथाम और दीगर जावियों से आखिर में कोई खुलासा फरमाइए।
अगर मिलिटेंट्स को थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेंथन होने का मौका मिल गया, या तालिबान हुकूमत के ज़रिए उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिल गया, तो फिर पाकिस्तान में वो वही अंदाज और रवैया इख्तियार करेंगे जो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रखी थी, जो उन्होंने यहाँ अभी सीरिया के अंदर रखी थी। उनके मुकाबले में कोई मिलिट्री नहीं होगी, उनके मुकाबले में कोई फोर्स नहीं होगी, वो आवाम, मिलिट्री और फोर्सेस सब के मुकाबले में कत्लेआम का अंदाज इख्तियार करेंगे। ये वहशी हैं, इनके यहाँ अक्ल नहीं है, ये इंसानों के साथ नहीं रह सकते हैं, इनके साथ वही सलूक करने की ज़रूरत है जो खवारिज के साथ जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किया था, ये नहीं करेंगे। ये इस पाक वतन के मुकाबले में मुत्तहिद हैं, और तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस पाक धरती के टुकड़े करने के ये दरपे हैं। लिहाजा फ़ौज को अपनी बका के लिए, इस मुल्क की बका के लिए और इन इदारों की बका के लिए हकीकी मौकफ लेना होगा, जो ताहाल नहीं लिया है। जी, मैं एक बात से कंक्लूड करते हुए कि देखें, पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर ये मनफी चीज़ों में मुस्बत चीज़ें भी हैं। मुज़ाहमत का बलाग खड़ा होना शुरू हो गया, अवामी अप्रिसिएशन उसे मिलनी शुरू हो गई है, मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम उसको रोकने में नाकाम हुआ है, और उन्होंने पार्टियों के मुकाबले में भी स्टैंड लिया है, इलाकाई इस्तेसाल से भी बाहर निकले हैं, और ये जो एक मूवमेंट चली है ये असल में हमारा सिम्बॉलिक इजहार था। आपने देखा डेरा अली यार के अंदर, आपने देखा क्वेटा के अंदर, आपने देखा खुद इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर, आपने देखा अभी खैरपुर मीरत सिंध के अंदर, आपने देखा उससे पहले हैदराबाद के अंदर, उससे पहले आपने कराची के अंदर देखा, आवाम निकल रही है। हम ये बावर करा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर मुल्क को बेचने का कोई डिसीजन होगा तो अवामी ताकत के साथ हम लोग खड़े होंगे, और ये सिर्फ एक मकतब फिक्र नहीं खड़ा होगा, आपके साथ अहले सुन्नत खड़े हो रहे हैं। आप जानते हैं हमने 50 अहले सुन्नत जमातों ने मुश्तरका आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो की है, और जिसमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक जमात के तौर पर उनके साथ शरीक थी, और यूनैनिमसली वहाँ पर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया है। अहले सुन्नत मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर आपके साथ खड़ी है, और ये ब्लॉक अब तेज़ी के साथ स्ट्रेंथन हो रहा है। मुहिब वतन कौंसिल एक्टिव हो गई है, और अहले सुन्नत को और हकीकी जो मुहिब वतन कुवत है उन्हें एतमाद आना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के अंदर ये मुस्बत चीज़ें भी होंगी, हम इंशाल्लाह ये दिफाए वतन का नाम इन एंटी पाकिस्तान पावर्स के हाथ से लेकर हकीकी कुवतों को देंगे, और उनको पाकिस्तान के अंदर एक अवामी ताकत बनाएंगे, और उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल कंडीशन को बदलेंगे, और ये बदला जा सकता है और ये बदलना ज़रूरी है, और इसका आगाज़ इंशाल्लाह हो चुका है। चैलेंजेस हैं सामने, लेकिन इंशाल्लाह उन चैलेंजेस के मुकाबले में स्टैंड लेंगे और इंशाल्लाह इन चीज़ों को बदलेंगे।
शाहिद साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम से इस्तफादा किया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।